तो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 20वें अध्याय के 43वें 43rd वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मसर्गम तमकायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद् वितन्वते। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। तात्पर्य, श्राद्ध है कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों या वंशजों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंड दान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बदजीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकट ग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों में कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है, कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शिलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तार। हरे कृष्ण। तो जैसा आप सब जानते हैं कि संवाद चल रहा है विदुर जी और मैत्रेय के बीच में। और सो विदुर जी ने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मुझे बताओ कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की थी। तो वो बता रहे हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो पीछे बात चल रही थी कि ब्रह्मा जी ने अपने बटक से कूलों से असुरों को बनाया, और असुर जो हैं वो सेक्स करने के लिए इतने उत्तेजित थे कि ब्रह्मा जी पे अटैक कर दिया सेक्स करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागे, तो भगवान की शरण ली। तो भगवान ने बोला कि आप अपने इस शरीर का जिससे आपने ऐसी असुर को जन्म दिया उसको त्याग दो। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो यहाँ पे हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, हमने चर्चा भी किया था पिछली बार कि उस शरीर को त्यागने का मतलब है, भगवान का मंतव्य है कि अपनी इस मानसिकता को त्याग दो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी शरीर त्यागते जा रहे हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे शरीरों का त्याग किया। तो बेसिकली इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी अपने अलग अलग चेतनाओं का त्याग कर रहे हैं, जिसको अलग अलग लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद अपनी तंद्रा से, आलस्य से ब्रह्मा जी ने प्रेतों और पिशाचों को उनकी रचना की, सृष्टि की। तो प्रेत और पिशाच जो हैं वो नंग धड़ंग उनके सामने आके खड़े हो गए, बाल बिखरे हुए थे। तो उनको देख के ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली, क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य का त्याग किया तो उसको प्रेतों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सोते समय जिनके मुंह से लार गिरती है तो वो अशुचि हो जाते हैं, वो मुची अवस्था होती है, और ऐसे लोगों पर प्रेत और पिशाच का अटैक का खतरा बढ़ जाता है ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्वों का जो है उनकी सृष्टि की अपनी कांति के माध्यम से, और फिर उस कांति को गंधर्वों ने एक्सेप्ट कर लिया। और गंधर्वों का लीडर कौन था? विश्वावसु। ये विश्वावसु वही गंधर्व है जो एक बार अपने एरोप्लेन से जा रहा था तो देवहूति नीचे अपने पैलेस की छत पर, अपने महल की छत पर बॉल से खेल रही थी। तो उत्तेजित होकर अब धड़ाम नीचे गिर गया था अपने प्लेन से विश्वावसु। उसके बाद अब बात आई कि ब्रह्मा जी ने अपने परोक्ष शरीर से, इनविजिबल बॉडी से, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाभि से जो ब्रह्मा जी ने पितरों और साध्यों की सृष्टि की। तो ऐसा नहीं है कि पितृ साध्य नहीं होते, पितृगण होते हैं, और पितरों का अपना एक महत्व है, और जो पितृलोक है वो भी स्वर्ग लोक की तरह ही है। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में चर्चा कर रहे हैं इसकी, नहीं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना भगवद गीता में, क्या बोल रहे हैं? सो क्या वर्ष है वो? यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। कि जो पितरों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है जो, वो पितरों की जो सेवा करता है तो वो पितृलोक चला जाता है, इनविजिबल उसको बॉडी मिल जाती है और उस शरीर से वो पितृलोक में जाकर निवास करता है। और कब तक निवास करता है? तो बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जब तक उसके जो वंशज हैं, जब तक वो पिंडदान और जो श्राद्ध करते रहते हैं तब तक वो वहाँ पे रहेगा पितृलोक में। जैसे ही वंशजों ने श्राद्ध करना बंद कर दिया वैसे ही क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वहां पर रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा, वापस भौतिक शरीर में इस भौतिक मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पर वापस उसका पदार्पण हो जाएगा, गिर जाएगा आके, मतलब दोबारा से कर्म बंधन अपना उसको करने पड़ेंगे उसको शरीर के अंदर। तो ये बेसिकली श्राद्ध का है। लोग श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि विवाह का पर्पज ही होता है, विवाह का पर्पज है कि पुत्र, एक योग्य पुत्र पैदा हो जाए और वो योग्य पुत्र जो है वो हमारे मरने के बाद हमें श्राद्ध की रोटी खिलाता रहे, तो उससे हम पितृ के रूप में भोग करते रहे। ये बेसिक पर्पज होता है। और अगर गलत काम किए और गलत काम के परिणाम स्वरूप अगर स्थूल शरीर नहीं मिल पाया, आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार का है और जो स्थूल शरीर है वो भूमि आपो अनलो वायु, वो पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, इन पांच पदार्थों से स्थूल शरीर बनता है। तो वो जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर छोड़ देती है आत्मा, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ चलता है। इस भौतिक जगत में आते ही उसको अंडर गार्मेंट्स डाल देते हैं आत्मा को, मन बुद्धि अहंकार के, और ये आखिरी तक जब तक भौतिक जगत में रहेगा साथ चलते हैं। ये चाहे आप टॉप मोस्ट प्लैनेट पर चले जाओ, सत्यलोक पर चले जाओ, ब्रह्मा जी जहाँ निवास कर रहे हैं वहां पर भी ये सूक्ष्म शरीर साथ चलता है मन बुद्धि अहंकार का। जब भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो ये मन बुद्धि और अहंकार यहीं पर रह जाएंगे। एक्चुअली में ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, ये झूठा मन, झूठी बुद्धि और झूठा अहंकार है। तो जब इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाता है जीव तो तो उसको जो सच्चा मन, सच्ची बुद्धि और सच्चा अहंकार मिल जाता है। सच्चा अहंकार क्या है? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, सच्चा अहंकार है कि मैं कृष्ण दास हूं। ये अभिमान होना चाहिए एक्चुअली में, ये अभिमान होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं गुरु का दास हूं। ये भी अभिमान है, ये भी ईगो है, लेकिन ये सच्ची ईगो है और कल्याणकारी है, इससे जीव का लाभ होगा, ये पॉइंट है। तो जब मोक्ष प्राप्त होता है, सारूप्य सामीप्य सालोक्य सारिष्ठी, तो जो जीव है ये झूठा मन, झूठी बुद्धि, झूठी अहंकार छोड़ के जो वास्तविक उसका स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। और अगर इस भौतिक जगत का कोई जीव ये मोक्ष प्राप्त कर ले तो इस लोक की तो बात छोड़ दो, सत्य लोक तक के जो निवासी हैं वो लोग भी प्रशंसा करते हैं ऐसे व्यक्ति की। मुक्ति जीव को मिल रही है पृथ्वी लोक पे, लेकिन उसकी प्रशंसा कहाँ हो रही है? सत्य लोक के अंदर। बृहद भागवत मत में इसकी चर्चा आती है, सनातन गोस्वामी बता रहे हैं बृहद भागवत मत में कि उन्होंने सनातन गोस्वामी एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं, गोप कुमार, आपने पढ़ा है गोप कुमार? तो गोप कुमार बेसिकली सारे लोकों में जा रहा है अलग अलग, तो ये जो गोप कुमार है स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक से फिर ऊपर महर लोक, जन लोक और फाइनली सत्य लोक में पहुंच गया, जहां पर ब्रह्मा जी हैं। तपोलोक पे चार कुमार रहते हैं, सनत, सनक, सनातन, सनंदन, और वैसे ही और भी लोग रहते हैं। और बताया गया है कि सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सनत कुमार, सनक, ये सब जो चार कुमार हैं, ये अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। इनफैक्ट भगवान के ध्यान में इतना लीन हो जाते हैं ये कि भगवान का ही रूप धारण कर लेते हैं। अमेजिंग बात चल रही है। इतना ध्यान, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं कि बिल्कुल भगवान का ही रूप बना लेते हैं वो, इतनी उच्च स्थिति है उनकी। ये तो तपोलोक की बात है, उसके ऊपर सत्यलोक है जहां पर ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। और हमेशा भगवान का वहां पर यज्ञ चलता रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान स्वयं प्रकट होकर उस यज्ञ अग्नि के अंदर, भगवान स्वयं प्रकट होकर खुद साक्षात उस जो भी यज्ञ सामग्री है उसको ग्रहण करते हैं भगवान। और भरत भागवत में यह भी बताया है कि जो भगवान का स्वरूप है वहां पर, वो अग्नि भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है, इतना तेज है भगवान के स्वरूप में। और हमेशा जो भक्त है वहां पर तपोलोक में, सत्यलोक में, हमेशा भगवान को देखते रहते हैं, साक्षात दर्शन करते रहते हैं। हम यहाँ पड़े हुए हैं, देख लो क्या हालत है हमारी। सो जो पितृगण है वो भी श्राद्ध के जो जो अर्पण किया जाता है वंशजों द्वारा, वो ग्रहण करते हैं। तो ये बेसिकली विवाह करने का एक पर्पज है, लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें वो पर्पज भी खत्म हो चुका है बेसिकली। आज के डेट में जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जो आज के टीनेजर्स हैं सो कॉल्ड, और जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से और संस्कारों से। वो उनको पैदा होते ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, और माँ बाप हालांकि बोलते हैं कि हम बहुत वेल विशर हैं बच्चों के, लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप ही बन रहे हैं आजकल। उनको पढ़ाई के लिए प्रेशर देंगे, जैसे अब सर्दी है, सर्दी में कौन बच्चा रजाई छोड़ के उठना चाहेगा ना, 4 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन माँ बाप उसको उठाएंगे, उठ जा स्कूल का टाइम हो गया। कोई माँ बाप ये नहीं कहता उठ जा भैया माला कर ले, कितने माँ बाप है इनफैक्ट डिवोटीज भी नहीं अपने बच्चों को प्रेशराइज करते कि भैया करनी है माला, नहीं कौन करता है, कितने डिवोटीज प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे आध्यात्मिकता की बात आती है तो इवन भक्त भी ये बोलता है देखो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अब तो पढ़ाई में जबरदस्ती कर रहा है भाई, जिसका कोई लाभ ही नहीं है, जड़ विद्या है। हाँ, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं कि जो जड़ विद्या है ये माया का वैभव है, कुछ लेना देना नहीं है इसका आध्यात्मिक जगत से। तोमार भजने बाधा, भगवान के भजन में बाधा है। अनित्य संसार है मोह जन्मिया, उसका काम क्या है जड़ विद्या का, कि जो अनित्य संसार है इसमें आसक्ति पैदा कर और जीव के करे गाधा, गधा बना दो उसको, चल बेटा पिला रहे अब तू, लगातार सुबह शाम काम करता रहे। जैसे पवर्ग होता है ना, कि पवर्ग में एक शब्द है फ है परिश्रम, फौस है फेन, मुंह से इतनी झाग निकलती है, इतना काम करता है, जैसे घोड़े होते हैं ना दौड़ते हैं या बैल हैं तो बहुत मशक्कत करते हैं तो मुंह से फेन निकलने शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो माँ बाप हैं बच्चों को लगा रहे हैं, चल बेटा हमने भी यही किया था अब तू भी यही करता रहे। कोई संस्कार नहीं दे रहे, कुछ लेना देना नहीं है। आज के डेट में संस्कार का मतलब अगर बोला जाए तो संस्कार का मतलब है कि मंगलवार को मंदिर चले जाओ बूंदी चढ़ा दो 5 रुपए की, या सोमवार को जाके 50 ग्राम दूध में 500 ग्राम पानी मिला के शिवलिंग पर चढ़ा दो, ये संस्कार है बस। कर रहे हैं वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है वो। अरे क्या कर रहे हो यार आप, मतलब बिल्कुल कुछ उसको बता ही नहीं रहे डिवोशन के बारे में, और ये नहीं बता रहे कि देवी देवताओं की उपासना करने से मतलब जो फल मिलेगा अनित्य फल है, और वो फल के फलस्वरूप वापस भौतिक जगत में पिसते रहोगे। तो जो माँ बाप जैसा बो रहे हैं वैसा ही काट रहे हैं आगे। अर्जुन महाभारत के शुरुआत में इतना परेशान था कि वर्ण संकर ना पैदा हो जाए, स्त्रियां दूषित नहीं हो जाए, तो बट एक्चुअली में ये हो ही गया। देख लो कलयुग के प्रभाव से कोई रीति रिवाजों को संस्कारों को मान ही नहीं रहा, तो फिर विवाह करने का पॉइंट क्या है अगर बच्चों ने श्राद्ध करना ही नहीं है, अगर बच्चों ने अपने पितरों के कल्याण के लिए अगर कोई भी परिश्रम कुछ भी यज्ञ श्राद्ध इत्यादि नहीं करने, तो फिर विवाह करने का पॉइंट ही नहीं है। इससे अच्छा तो ब्रह्मचारी रहना ज्यादा अच्छा है, नहीं? अदरवाइज हम शादी कर लो, एक वाइफ आके लग जाएगी ऊपर, फिर 2-3 बच्चे हो जाएंगे, वो कपड़े खींचना शुरू कर देंगे, ये चाहिए पापा, वो चाहिए वो पापा, मम्मी बस उस काम में लगे रहते हैं। जीवन के कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। हम मर गए तो बाद में हमारे कल्याण के लिए, माँ बाप के कल्याण के लिए, पुत्रों के कल्याण के लिए कुछ होने वाला नहीं है। ये इस डायरेक्शन में एक्चुअली में हम चल रहे हैं आज की तारीख में। ये तो भला हो शिला प्रभुपाद था कि उन्होंने थोड़ा सा मुख मोड़ दिया, जितनी तेजी से हम गिर रहे अंधकार के गर्त में। सो ऐसा विवाह करने से कुछ लाभ नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इसीलिए बोला कि भैया ब्रह्मचारी बन जाओ वो ज्यादा ठीक है। ब्रह्मचारी बनने से बात चलती रहेगी, आप हर क्षण भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। ब्रह्मचारी का मकसद ही है, उद्देश्य ही है कि हर क्षण भगवान को प्रसन्न करने की उसमें उसको अवसर होता है उसके पास में। नहीं तो जो गृहस्थ लाइफ में घुस जाता है, चाहे डिवोशन में भी आ जाए, तो भी 136 उसके ऊपर पचड़े होते हैं। कभी फैमिली को अपने ससुराल छोड़ने जाता है, कभी लेने जाता है। नहीं और क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियसली वाइफ हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है, हस्बैंड वाइफ पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर हस्बैंड काम से ट्रैवल कर रहा है तो वाइफ उसको बोलती रहती है घर क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। वाइफ मायके चली जाए तो हस्बैंड फोन करते रहे आ जा भैया प्रॉब्लम हो रही है, इतनी कपड़े कौन धोएगा, ये क्या है वो क्या है, इसी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है बेसिकली। चाहे डिवोटी बन के भी शादी गृहस्थ लाइफ में घुस गए, बिल्कुल खचड़े की हालत हो जाती है शादी। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी मत करो, लेकिन शादी करने से ऐसा होता है, ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर हम यहां पर तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्राद्ध नहीं करने चाहिए, बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो कोई जरूरत नहीं श्राद्ध करने की। क्यों? क्योंकि भक्त हर क्षण भगवान को प्रसन्न कर रहा है। और फिर श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का कि देखो प्रहलाद महाराज ने तो भगवान को प्रसन्न किया, तो उनको अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा तुम बात कर रहे हो अपने पिता की, तुम्हारे दादा परदादा सब 14 पीढ़ियों तक जो भी प्रसन्न करता है भगवान को, मुझे प्रसन्न करता है, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप काम हो जाता है बेसिकली। और गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्क्रिया सार दीपिका में बोल रहे हैं कि भक्त को हरि नाम के प्रति अपराध करने से बचने के लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर भक्त श्राद्ध कर रहा है तो इसका मतलब उसको हरिनाम पर भरोसा नहीं है कि हरिनाम से मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो हरिनाम के प्रति अपराध हो गया। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि अद्वैताचार्य ने श्राद्ध किया और श्राद्ध पात्र उन्होंने हरिदास ठाकुर को अर्पित किया। चैतन्य महाप्रभु ने श्राद्ध किया। चैतन्य भागवत में भी चर्चा है कि उन्होंने श्राद्ध किया, और वहाँ पर जो श्राद्ध है, जो पर्टिकुलर श्राद्ध किया चैतन्य महाप्रभु ने, उसका नाम था नांदीमुख, नांदीमुख नामक श्राद्ध किया। और चैतन्य चैतन्य में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु गया गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने पिता के प्रति श्राद्ध किया पितरों के लिए, और वहीं पर वो दोबारा मिले शिला ईश्वरपुरी से, अपने गुरु से दोबारा मिले थे। तो कैसे सामंजस्य बिठाएं इस बारे में, कैसे समझें कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारा क्या हमारा क्या कर्तव्य है, ये कैसे हम इस चीज़ को जाने, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये क्वेश्चन रेज किया कि वैष्णव को क्या श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं श्राद्ध करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पहला उत्तर दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि नहीं करना चाहिए, और उन्होंने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला देव ऋषि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो श्रीमद् भागवतम 11.5.41 में ये बताया गया है कि जिसने भगवान के चरण कमलों की पूरी तरह से शरण ले ली है, वो पितृ देवी देवता साधु महात्मा किसी की प्रति ऋणी नहीं है। उसने भगवान की शरण लेकर सारे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर दिया। कैसे निर्वाह कर दिया, श्रीमद् भागवतम इस बात का भी वर्णन करती है कि यथा तरोर मूल निषेच नैना, कि जैसे आपने वृक्ष की जड़ में जड़ डाल दिया तो उसकी पत्ती तना टहनियाँ फल फूल सब अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो तृप्त हो जाएंगे। सो इसलिए जो भक्त जिन्होंने पूर्णतः भगवान की शरण ले ली है उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है पूर्णतः, पूरी तरह से फुल्ली जिन्होंने सरेंडर कर दिया। जब तक फुल्ली सरेंडर नहीं किया भगवान को, जब तक कुछ लेश मात्र भी कमी है, तब तक भक्त को इस भौतिक संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब तक ये कहा जा सकता है कि उसने अपने उसको जो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति, पितरों के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वाह करना पड़ेगा। इसकी कन्फर्मेशन भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है ये। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। जब तक पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाते, कंप्लीटली पूरी तरह से डिटैच नहीं हो जाते इस भौतिक संसार से, जब तक भगवान, जब तक हरि कथा और हरि नाम इन दोनों में जब तक पूरी श्रद्धा नहीं आ जाती, तब तक जो व्यक्ति है उसको जो वैदिक रिचुअल्स हैं, वैदिक जो संस्कार हैं, यज्ञ हैं, उसको उसका निर्वाह करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो लेकिन अद्वैताचार्य ने क्यों किया? अद्वैताचार्य क्या, अद्वैताचार्य की हरि नाम हरि कथा में पूर्णतः रुचि नहीं है? और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों किया? चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये लोग क्यों श्राद्ध इन्होंने किया? तो इन्होंने श्राद्ध किया लोकाचार के लिए। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। अद्वैताचार्य सरीखे जो अद्वैताचार्य महाविष्णु है लेकिन भक्त के रूप में आए, अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु ये जो महाजन है, ये जो लीडर्स हैं इस पूरे संसार के, ये लोकाचार के लिए ऐसे काम करते हैं। इन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य का जो आचरण है उनकी क्रियाएं सिर्फ भक्ति देख रहे हैं, या भक्त भी देख रहे हैं और जो आधे अधूरे भक्त हैं वो भी देख रहे हैं। सो उनका उदाहरण देकर जिन लोगों की भगवान के नाम में पूर्णतः श्रद्धा अभी जागृत नहीं हुई है, वो लोग इससे अपने आप को बचने का प्रयास नहीं करें कि श्राद्ध क्यों करें। अद्वैताचार्य ने कहां किया था, चैतन्य महाप्रभु ने कहां किया था? लोकाचार को, ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर जो अद्वैताचार्य जैसे जो महाजन है वो व्यवहार करते हैं, ताकि लोग गलत उनका उदाहरण ना लेकर जो उनके कर्तव्य हैं, जिसके वो अधिकारी हैं। अभी अगर हमारी पोजीशन ये है कि हमें ये काम करना चाहिए तो करना चाहिए, उससे बचने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली श्रद्धा शब्द का मतलब ही यही है, जो श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा शब्द का अर्थ ये नहीं है कि हम श्रद्धा तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं रहे उसके लिए। श्रद्धा बहुत है हमारी हरि नाम में, जपेंगे ही, श्रद्धा बहुत है भगवान में लेकिन सेवा नहीं करेंगे, श्रद्धा बहुत है ग्रंथों में लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ऐसी श्रद्धा जो है वो किसी काम की नहीं है, बेकार है, ढोंग है बेसिकली। तो हमारे जो अद्वैताचार्य ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, उन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए किया। सो भक्त को क्या करना चाहिए, हमें ये ऑफकोर्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी हरिनाम में अभी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हम लोग हरिनाम के प्रति अभी तक अभी पूर्णतः सरेंडर्ड नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसका उपाय बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि फाइन, आप श्राद्ध कर लो लेकिन आप स्मार्ट विधि से श्राद्ध मत करो, आप भागवत विधि से श्राद्ध करो। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी श्राद्ध का समय आए तो श्राद्ध के दिन आप हरि नाम करो, भगवत गीता का पाठ करो और वैष्णवों को आमंत्रित करो, उनको भोजन करवाओ जैसे अद्वैताचार्य ने भोजन करवाया हरिदास ठाकुर को। और इस माध्यम से हम लोग भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे और अपने जो पितर हैं, अगर उनको भौतिक शरीर नहीं मिल पाया, वो सूक्ष्म शरीर में फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत तकलीफ में है, भूत प्रेत की योनि में, तो उनको उस अवस्था से मुक्ति मिल जाएगी, भौतिक शरीर मिल जाएगा, ताकि वो आत्म उन्नति के लिए कार्य कर पाएंगे और भगवान को प्रसन्न करके, भक्तों को प्रसन्न करके अगर हम अपने पितरों का कल्याण करेंगे, तो जब पितरों को भौतिक शरीर मिलेगा तो तब भी ऐसा नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। जब भक्तों को, जब भगवान को प्रसन्न करने के माध्यम से भौतिक शरीर मिलेगा, तो भगवान उसको वो प्रोपेंसिटी, वो प्रवृत्ति भी देंगे कि वो भक्ति के कार्य करें। अगर सिर्फ स्मार्ट विधि से अगर श्राद्ध करते हैं तो प्रेत योनि से मुक्ति तब भी मिलेगी, लेकिन भगवान की सेवा में अनुरक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान की सेवा में अनुरक्त होने का अवसर तब मिलेगा जब भागवत विधि से हम श्राद्ध संपन्न करेंगे, भागवत विधि से भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करके अगर हम श्राद्ध विधि संपन्न करते हैं, तो हम पितरों का वास्तविक रूप से कल्याण कर पाएंगे। और गीता महात्म्य में एक्चुअली में यह बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गीता महात्म्य में बताया गया है, पितरन उद्दिश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति ही संतुष्टः पितरस्तस्य निर्याद यान्ति स्वर्गतिम, कि जो व्यक्ति श्राद्ध के समय गीता का पाठ करता है, भगवत गीता पढ़ रहा है, उस कार्य के माध्यम से, भगवत गीता के पाठ करने के माध्यम से, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी और कुछ नहीं किया, भगवत गीता पढ़ ली, उसके प्रताप से, भगवत गीता पढ़ने के प्रताप से जो पितर हैं, जो नरक में भी अगर पीड़ा पा रहे हैं, तुरंत नरक से मुक्ति हो जाएगी और स्वर्ग लोक को चला जाएंगे, स्वर्ग लोक चले जाएंगे। गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्ध तर्पितः पितृलोकम् प्रयान्ति एव पुत्राशीर्वाद तत्परा। और जो पितृगण है, अगर उनको भगवत गीता के पाठ के द्वारा अगर हम उनको तर्पण देंगे, उनको उनके लिए श्राद्ध संपन्न करेंगे, तो वो लोग जब पितृलोक या स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में रुकेंगे और गीता पाठ करने वाले अपने वंशज को आशीर्वाद भी देंगे उसको। अगर हमने गीता दान कर दी श्राद्ध के समय, गीता का पाठ किया और जिन लोगों को भी हमने इनवाइट किया उनको अगर हमने गीता दान कर दी साथ में, तो सीधा वैकुंठ धाम रास्ता है, बीच में कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगने वाला। सो पॉइंट ये निकल के आया कि भक्त को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस जो प्रपोर्ट है, श्रील प्रभुपाद उसका अंत भी इसी श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है, कृष्ण भामरामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद कौन सा यहां पर प्रयार की बात कर रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। अगर कृष्ण भक्ति कर ली सारे काम स्वतः संपन्न हो जाएंगे, लेकिन जब तक पूर्ण विश्वास नहीं है, जब तक पूरा विश्वास नहीं है, तब तक ये कर्तव्य है जो गृहस्थ आश्रम में है कि वो भागवत विधि के माध्यम से वो श्राद्ध संपन्न करें, अपने घर में वैष्णवों को बुलाएं, भगवत गीता का पाठ करें, हरि नाम करें और भगवान को भोग लगाकर भक्तों को भोजन अच्छे से करवा के अपने पितरों का फायदा करें और इससे उनको भी आध्यात्मिक उन्नति का लाभ होगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने हाथ में माला पकड़ लिया है, अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो बहाने हैं और इससे ना हमें लाभ होगा ना हमारे जो वंशज हैं उनको कोई लाभ मिलने वाला है। इसलिए अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जब तक पूर्णतः गुरु और कृष्ण के शरणागत नहीं हुए तब तक हमें जो नियम कानूनों का जो उल्लेख हमारे शास्त्रों में दे रखा है उसका पालन हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, किसी का